एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम गोता लगा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत की दुनिया में जिनकी इंजीनियरिंग ने पर्सनल कंप्यूटर क्रांति की, कहना चाहिए, नींव रखी। स्टीव वोज़नियाक।
हाँ, जिन्हें सब प्यार से वोज कहते हैं।
बिल्कुल वोज। हम उनकी आत्मकथा आईवोस के आईने में उनकी कहानी समझने की कोशिश करेंगे। वो स्टीव जॉब्स के साथ एप्पल कंप्यूटर के सह संस्थापक तो थे ही,
लेकिन उससे भी ज्यादा वो असली तकनीकी जादूगर थे। पहले एप्पल कंप्यूटर्स मतलब एप्पल वन, और खास तौर पर जो क्रांतिकारी एप्पल टू था वो उन्हीं का डिजाइन था।
सही कहा।
और देखिए, उनकी कहानी सिर्फ एक और सिलिकॉन वैली की सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये एक अलग नजरिया पेश करती है। ये दिखाती है कि जो सच्ची इनोवेशन होती है ना, वो अक्सर पैसे या शौहरत के पीछे भागने से नहीं आती, बल्कि वो आती है कुछ बनाने के गहरे जुनून से, उम्दा इंजीनियरिंग के लिए एक लगाव से, और मुश्किल प्रॉब्लम को सुलझाने में जो मजा आता है ना, उससे। वॉज हमेशा तकनीक को आम इंसान को ताकत देने वाले एक टूल की तरह देखते थे,
ना कि सिर्फ कंपनियों के मुनाफे का जरिया।
बिल्कुल, ये फर्क बहुत अहम है उनके नजरिए में।
और शायद इसीलिए आज उनकी कहानी सुनना और भी जरूरी हो जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि ये जो आज की बड़ी टेक दुनिया है, इसकी जड़ें कहाँ थीं।
हाँ, वो दौर अलग था, व्यक्तिगत जिज्ञासा थी, थोड़ी शरारत भी थी, और बस कुछ नया, कुछ कमाल का बनाने का एक यूं कहें शुद्ध प्रेम था।
तो चलिए वोज के सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। कहाँ से शुरू हुई ये कहानी?
उनका बचपन तो वहीं बीता जिसे आज हम सिलिकॉन वैली कहते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स का कीड़ा वो तो बहुत छोटी उम्र में ही लग गया था।
इसमें उनके पिता का बड़ा रोल था शायद, वो भी इंजीनियर थे।
हाँ बिल्कुल, उनके पिता लॉकहीड जैसी बड़ी कंपनी में इंजीनियर थे, और उन्होंने वॉज को सिर्फ तकनीकी बारीकियां ही नहीं सिखाई, बल्कि ईमानदारी और नैतिकता का पाठ भी पढ़ाया। उनकी एक बात वॉज हमेशा याद रखते थे, इंजीनियरिंग सच्चाई के बारे में है।
इंजीनियरिंग सच्चाई के बारे में है, वाह।
और इसी सोच ने उन्हें बचपन में ही कमाल की चीजें बनाने को प्रेरित किया। कभी पड़ोसियों के लिए इंटरकॉम सिस्टम बना दिया, तो कभी अपना खुद का कैलकुलेटर।
और वो सुरुचिपूर्ण डिजाइन वाली बात, मतलब कम चीजों से ज्यादा काम लेना।
हाँ, उनका हमेशा से ये जुनून था, एलिगेंट डिजाइन, कम से कम पार्ट्स इस्तेमाल हो लेकिन काम बेहतरीन हो, सिंपल मगर असरदार।
दिलचस्प है।
और हाँ, शरारतों का जिक्र करना भी जरूरी है, उन्हें प्रैंक्स करने का बड़ा शौक था।
अच्छा, किस तरह की शरारतें?
अरे, वो इसे सिर्फ मजाक नहीं मानते थे, वो इसे सिस्टम को समझने का, प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक क्रिएटिव तरीका मानते थे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मेट्रोनोम से बॉम्ब की नकली आवाज बनाना,
बाप रे,
या टीवी सिग्नल जैम करने वाला डिवाइस बना देना। ये शरारतें भी एक तरह से उनकी इंजीनियरिंग प्रैक्टिस ही थीं।
कमाल है, ये शरारतें और सिस्टम समझने की धुन, ये आगे भी चली, मतलब हाई स्कूल कॉलेज में।
बिल्कुल चली, और एक नए लेवल पर पहुंच गई। उन्होंने फोन फ्रीकिंग की दुनिया खोजी।
फोन फ्रीकिंग मतलब वो टेलीफोन नेटवर्क से?
हाँ, छेड़छाड़ करके मुफ्त कॉल करने का तरीका। और यही उनकी दोस्ती स्टीव जॉब्स से हुई। दोनों ने मिलकर ब्लू बॉक्स नाम के डिवाइस बनाए और बेचे भी।
अच्छा, यहीं से वो पार्टनरशिप शुरू हुई, वॉज बनाने वाले, जॉब्स बेचने वाले।
एग्जैक्टली, यहीं से वो डायनामिक सेट हो गया था।
लेकिन उस वक्त तो वो कहीं और काम कर रहे थे ना, एचपी में।
हाँ, और कमाल की बात ये है कि वो हेवलेट पैकर्ड में काम कर रहे थे और उसे अपनी सपनों की नौकरी मानते थे। एचपी की जो इंजीनियरिंग कल्चर थी ना उस जमाने में, वो उन्हें बहुत पसंद थी, काफी आजादी थी वहाँ।
और इसी दौरान अटारी के लिए भी कुछ किया था उन्होंने।
का जो मशहूर वीडियो गेम था ब्रेकआउट, उसका हार्डवेयर डिजाइन किया, और वो भी सिर्फ 4 दिनों में, बेहद कम चिप्स का इस्तेमाल करके। ये अपने आप में इंजीनियरिंग का एक नमूना था, सस्ता, भरोसेमंद।
जबरदस्त। लेकिन फिर जिंदगी बदली होम ब्रू कंप्यूटर क्लब से जुड़कर, है ना?
हाँ, वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। वो सिर्फ एक क्लब नहीं था, वो कंप्यूटर के दीवानों का एक जमावड़ा था जो पर्सनल कंप्यूटर के भविष्य के सपने देख रहे थे।
वहाँ माहौल कैसा होता था?
लोग अपने बनाए हुए गैजेट्स लाते थे, दिखाते थे, आइडियाज शेयर करते थे, एक दूसरे से सीखते थे। वहीं वोज को ये आइडिया आया कि एक ऐसा कंप्यूटर बनाया जाए जो आम लोगों के काम आए, जिसमें कीबोर्ड हो, जिसे टीवी से जोड़ा जा सके।
और यहीं से एप्पल आई का जन्म हुआ।
बिल्कुल, वो क्लब एक तरह से पीसी क्रांति का ग्राउंड जीरो था।
लेकिन वो तो शायद इसे बस शौक के तौर पे कर रहे थे, कंपनी बनाने का विचार कहां से आया?
वहीं स्टीव जॉब्स की एंट्री होती है, वो शायद इसे बनाकर दोस्तों में ही बांट देते। वो अपनी एचपी की नौकरी से खुश थे, कोई कंपनी नहीं शुरू करना चाहते थे।
अच्छा।
हाँ, लेकिन जॉब्स ने वोज के डिजाइन में वो कमर्शियल पोटेंशियल देखा। उन्होंने ही वोज को मनाया कि भाई एचपी छोड़ो और अपनी कंपनी शुरू करो।
और फिर 1976 में एप्पल कंप्यूटर की शुरुआत हुई।
हाँ, वो पल था जब वोज की इंजीनियरिंग प्रतिभा और जॉब्स की बिजनेस वाली नजर एक साथ आई।
एप्पल वन तो बस शुरुआत थी, असली धमाका तो एप्पल टू था, है ना, जिसे वोज खुद अपना बेस्ट काम मानते हैं।
ओ बिल्कुल, एप्पल टू तो एक मास्टरपीस था उस जमाने के हिसाब से। कई ऐसी चीजें थी जो पहले किसी ने नहीं की थी।
जैसे कि?
एक तो पूरा इंटीग्रेटेड डिजाइन, कीबोर्ड, पावर सप्लाई, सब एक बढ़िया से प्लास्टिक केस में। फिर कम कीमत पर कलर ग्राफिक्स, ये बहुत बड़ी बात थी।
हाँ।
उस जमाने में कलर ग्राफिक्स महंगे होते थे।
बिल्कुल।
और बिल्ट इन साउंड भी था। लेकिन जो सबसे दूर की सोच वाली चीज थी वो थे एक्सपेंशन स्लॉट्स।
एक्सपेंशन स्लॉट्स मतलब आप उसमें कार्ड वगैरह जोड़ सकते थे।
हाँ, यूजर अपनी जरूरत के हिसाब से कार्ड लगाकर कंप्यूटर की कैपेबिलिटी बढ़ा सकता था। ये एक खुला सिस्टम था जो वॉज की सोच को दिखाता है।
ये तो वाकई क्रांतिकारी था।
और फिर आया डिस्क टू फ्लॉपी ड्राइव, उसका कंट्रोलर भी वॉज ने डिजाइन किया था। फिर से वही बात, कम चिप्स में ज्यादा काम, बहुत सरल, बहुत सस्ता। एप्पल टू की ये सारी खूबियां वॉज की उसी सोच से निकली थीं, एक बेहतरीन सुरुचिपूर्ण कंप्यूटर बनाना जो वो खुद इस्तेमाल करना चाहे।
लेकिन जैसे जैसे एप्पल बड़ी होती गई, गैराज से निकलकर एक कॉरपोरेशन बनी, वॉज के लिए चीजें बदलने लगी, वो थोड़े असहज होने लगे।
हाँ, ऐसा लगता है। वो कॉर्पोरेट कल्चर, वो पॉलिटिक्स, मीटिंग्स, मैनेजमेंट, ये सब उनके स्वभाव से मेल नहीं खाता था। वो दिल से तो एक इंजीनियर थे, बनाने वाले थे।
और उनकी उदारता का भी जिक्र आता है, उन्होंने अपने शेयर्स बांट दिए थे।
हाँ, ये कमाल की बात है। जब एप्पल पब्लिक हुई और शुरुआती कर्मचारियों को उनके हिसाब से स्टॉक में उनका सही हिस्सा नहीं मिला, तो वॉज ने अपने पर्सनल स्टॉक से लाखों डॉलर के शेयर उनमें बांट दिए।
वाह, ये बड़ी बात है,
बहुत बड़ी। फिर 1981 में वो विमान हादसा हुआ।
हाँ, वो एक बड़ा मोड़ था उनकी जिंदगी में। क्या हुआ था उसमें?
एक छोटे विमान के क्रैश में उन्हें गंभीर चोटें आईं, खासकर सिर पर, और उसकी वजह से उन्हें कुछ वक्त के लिए एंटेरोग्रेडेड एमनेशिया हो गया।
एंटेरोग्रेडेड एमनेशिया मतलब?
मतलब वो दुर्घटना के बाद की नई यादें नहीं बना पा रहे थे। पुरानी यादें थीं लेकिन नई मेमोरी फॉर्म नहीं हो रही थी। ये उनके लिए एक बहुत ही झकझोर देने वाला अनुभव था।
जाहिर है, इसने उन्हें सोचने पर मजबूर किया होगा।
बिल्कुल, जिंदगी क्या है, प्राथमिकताएं क्या है, इन सब पर उन्होंने नए सिरे से सोचा।
और इसी के बाद उन्होंने धीरे धीरे एप्पल से दूरी बना ली।
हाँ, उन्होंने पहले तो वापस कॉलेज जाकर अपनी डिग्री पूरी की, वो भी किसी और नाम से।
अच्छा, छद्म नाम से।
हाँ, और फिर वो उन चीजों में लग गए जिनसे उन्हें सच में खुशी मिलती थी, जैसे स्कूल के बच्चों को कंप्यूटर सिखाना। उन्होंने करीब 8 साल तक 5वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाया।
कमा है, एप्पल का कोफाउंडर बच्चों को पढ़ा रहा है।
और उन्होंने बड़े बड़े यूएस फेस्टिवल्स भी आयोजित किए जो संगीत और टेक्नोलॉजी के संगम थे। ये दिखाता है कि उनके लिए सफलता के मायने बदल गए थे, पैसा या रुतबा नहीं, बल्कि वो काम जिससे खुशी मिले।
तो अगर हम वोजनियाक्स के जीवन और काम के मूल सिद्धांतों, उनके वैल्यूज को समझने की कोशिश करें तो क्या बातें सामने आती हैं?
देखिए, सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी बात है इंजीनियरिंग की शुद्धता और कुछ बनाने का आनंद। उनकी असली ड्राइविंग फोर्स पैसा या शोहरत नहीं थी, उन्हें मजा आता था उस इंटेलेक्चुअल चैलेंज में, सर्किट को खूबसूरती से डिजाइन करने की कला में।
ये बात तो बार बार सामने आती है। और दूसरा, वो जुनून और जिज्ञासा वाली बात।
हाँ, कि इनोवेशन का असली इंजन वही है। उनके जो सबसे बड़े काम है एप्पल वन, एप्पल टू, वो सब साइड प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हुए थे, अपनी रुचि के लिए, अपने खाली समय में। कोई तयशुदा प्लान नहीं था,
मतलब बस बनाने की लगन थी।
बिल्कुल। तीसरा अहम मूल्य है प्रामाणिकता और नैतिक ईमानदारी। वो जो उनके पिता ने सिखाया था, इंजीनियरिंग मतलब सच्चाई, वो उनके हर काम में झलकता है। उन्हें कॉरपोरेट जगत की जो तिकड़में होती हैं, जो बढ़ा चढ़ा कर मार्केटिंग की जाती है, उससे हमेशा परहेज रहा।
उनका मानना था कि प्रोडक्ट में दम होना चाहिए।
सही बात। और उनका नजरिया हमेशा टेक्नोलॉजी को आम इंसान के सशक्तिकरण के टूल की तरह देखने का रहा। कंप्यूटर व्यक्तिगत आज़ादी और क्रिएटिविटी बढ़ाने का जरिया है। एप्पल टू का जो खुला आर्किटेक्चर था वो इसी सोच का नतीजा था
कि लोग अपने कंप्यूटर को समझें, उसे बदल सकें, उससे खेल सकें।
बिल्कुल। आज के बंद सिस्टम से कितना अलग है ये। उनका फोकस हमेशा यूजर पर रहा, तकनीक सिर्फ इंजीनियरिंग का कमाल दिखाने के लिए नहीं बल्कि लोगों की असल जरूरतें पूरी करने के लिए होनी चाहिए।
जैसा उन्होंने कहा था, मैं लोगों को कुछ ऐसा देना चाहता था जो वाकई उनकी मदद करे।
हाँ, और अंत में उनकी जिंदगी का फलसफा बहुत सीधा है, खुशी सबसे बड़ा लक्ष्य है। उनका वो फॉर्मूला भी है H=SF।
हाँ, happiness=smiles frowns।
खुशी बराबर मुस्कान घटा उदासी।
बिल्कुल, बस उन चीजों पर फोकस करो जो खुशी दें और जिनसे उदासी आए उनसे दूर रहो। कितना सरल पर कितना गहरा।
उनकी जिंदगी में कई मोड़ आए, लेकिन अगर तीन सबसे अहम, सबसे ज्यादा परिवर्तनकारी मोड़ चुनने हो जिन्होंने सब कुछ बदल दिया, तो वो कौन से होंगे?
अच्छा सवाल है। मेरे ख्याल से पहला तो निश्चित रूप से होम ब्रू कंप्यूटर क्लब से जुड़ना था।
हाँ, उसका जिक्र हमने किया था। वो सिर्फ एक क्लब नहीं था, वो एक पूरा इकोसिस्टम था, प्रेरणा का स्रोत। वहीं उन्हें ये विश्वास मिला कि हाँ, एक आम इंसान के लिए पर्सनल कंप्यूटर बनाना संभव है और जरूरी भी। वहीं उन्होंने पहली बार अपना काम दुनिया को दिखाया। एप्पल आई का बीज वहीं पड़ा।
ठीक है, दूसरा
यकीनन स्टीव जॉब्स के साथ वो पार्टनरशिप और फिर एप्पल की स्थापना। जैसा हमने कहा, वॉज शायद अपने गैराज में ही बनाते रहते, जॉब्स ही थे जिन्होंने उस शौक को एक ग्लोबल क्रांति में बदलने का रास्ता दिखाया।
हाँ, वो इंजीनियरिंग और बिजनेस का मिलना,
बिल्कुल, जिसने इतिहास बदल दिया। भले ही उन दोनों के बीच कभी कभी तनाव भी रहा हो, ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग प्रतिभाएं मिलकर कुछ बड़ा कर सकती हैं।
और तीसरा मोड़?
तीसरा मेरे हिसाब से वो 1981 की विमान दुर्घटना थी। वो एक बहुत ही पर्सनल और गहरा टर्निंग पॉइंट था,
क्योंकि उसने उन्हें जिंदगी के मायने पर सोचने को मजबूर किया।
हाँ,
मौत को इतने करीब से देखना, फिर वो याददाश्त खोने का अनुभव, इसने उन्हें बुनियादी सवालों पर ला खड़ा कर दिया कि असल में क्या जरूरी है। इसी के बाद उन्होंने एप्पल के रोजमर्रा के काम से दूरी बनाई, पढ़ाई पूरी की और वो काम किए जो उन्हें सच में संतुष्टि देते थे, जैसे पढ़ाना। ये एक तरह का रीसेट था उनके लिए।
तो वोज की कहानी सिर्फ टेक की दुनिया के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए कुछ सबक रखती है, क्या कहेंगे आप?
बिल्कुल, सबसे पहला और सीधा सबक तो यही है कि अपने जुनून को फॉलो करने की क्या कीमत है। दुनिया हमें अक्सर तय रास्तों पर धकेलती है।
हाँ, जो सब कर रहे हैं वही करो।
बिल्कुल, लेकिन वोज दिखाते हैं कि अपनी सच्ची दिलचस्पी में डूब जाना, उसमें महारत हासिल करना ज्यादा मायने रखता है। उन्होंने वो बनाया जो उन्हें बनाना था, बाद में दुनिया को उसकी जरूरत महसूस हुई।
और दूसरा सबक, सफलता की अपनी परिभाषा गढ़ना। हाँ, ये बहुत जरूरी है। वॉज के लिए खुशी और संतुष्टि पैसे या पद से ज्यादा अहम थी। जब एप्पल का माहौल उन्हें रास नहीं आया, तो उन्होंने दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक को छोड़ने का फैसला किया।
और बाद में बच्चों को पढ़ाना चुना।
हाँ, ये दिखाता है कि उन्होंने अपनी खुशी को प्राथमिकता दी, न कि दुनिया की अपेक्षाओं को।
तीसरा सबक, वो जिज्ञासा और खेल वाली भावना, शरारतें करना।
बिल्कुल, उनकी शरारतें सिर्फ मजाक नहीं थी, वो उनकी क्रिएटिविटी का हिस्सा थी। ये दिखाता है कि कभी कभी लीक से हटकर सोचना, सिस्टम से खेलना, आपको अनोखे समाधानों तक ले जा सकता है।
और ईमानदारी, नैतिक होना।
हाँ, वो तो बुनियाद है, अपने काम में, अपने रिश्तों में सच्चे रहना। वॉज ने जो अपने पिता से सीखा उसे निभाया।
एक और बात जो मुझे लगती है वो है करके सीखने की अहमियत, हैंड्स ऑन लर्निंग।
ओ बिल्कुल, वॉज ने कंप्यूटर बनाना सीखा, उन्हें बस पढ़कर नहीं, चीजों को खोलना, जोड़ना, बिगाड़ना, फिर बनाना, असली समझ इसी से आती है।
तो आखिर में सहयोग का महत्व, अकेले शायद वो ये सब ना कर पाते।
शायद नहीं, होमरू क्लब ने उन्हें माहौल दिया, जॉब्स ने उन्हें दिशा दी। हालांकि एप्पल आई और टू उनकी निजी प्रतिभा थी, लेकिन वो प्रतिभा सही इकोसिस्टम में ही पनपी। आइडिया शेयर करने से ही प्रगति होती है।
तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए वोजनियाक के जीवन और काम से तीन मुख्य निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं हम?
पहला, एक भावनात्मक अंतर्दृष्टि। असली संतुष्टि बाहरी पैमानों से नहीं आती, जैसे पैसा या पद। ये तब मिलती है जब आप सफलता को अपनी शर्तों पर परिभाषित करते हैं और अपने सच्चे जुनून का पीछा करते हैं, भले ही इसके लिए स्थापित रास्ते छोड़ने पड़े, जैसा वॉज ने एप्पल छोड़कर टीचिंग को चुनकर किया।
ठीक है, दूसरी, एक बौद्धिक अंतर्दृष्टि।
वो ये कि दुनिया बदलने वाली इनोवेशन अक्सर तब जन्म लेती है जब आप सुरुचिपूर्ण इंजीनियरिंग और यूजर को होने वाले फायदे को बाजार की जरूरतों या मुनाफे से ऊपर रखते हैं। एप्पल टू का डिजाइन, जो शक्तिशाली होने के साथ साथ खुला और इस्तेमाल में आसान था, इसी सोच का प्रमाण है। तकनीक इंसान के लिए है।
और तीसरी, एक सार्वभौमिक अंतर्दृष्टि,
वो ये कि ईमानदारी, नैतिक मूल्य और एक बच्चे जैसी चंचल जिज्ञासा, ये सिर्फ अच्छे व्यक्तिगत गुण नहीं है, ये रचनात्मकता और प्रभावशाली काम करने के लिए बहुत शक्तिशाली औजार भी हो सकते हैं। वॉज के पिता की सीख और उनकी अपनी शरारती सोच, जिसने उन्हें अनोखे समाधान दिए, ये साबित करते हैं ये गुण किसी भी फील्ड में जरूरी हैं।
वॉज की कहानी वाकई सोचने पर मजबूर करती है। आज की इस तेज रफ्तार AI से भरी दुनिया में क्या एक अकेले जुनून से भरे इंजीनियर के लिए अब भी वैसी क्रांति लाना संभव है जैसी वॉज ने अपनी प्रतिभा से लाई थी, या इनोवेशन का खेल अब पूरी तरह बदल चुका है? ये सवाल विचार करने लायक है। फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।